की थी टू सेपरेट नेशंस की, मुसलमानों की या और किसी की नहीं थी, और उसकी बेस पे फिर टू नेशन थ्योरी जो थी वो सामने आई थी। और इसीलिए ये लोग जो हैं, जो नीची जात के लोग हैं, जैसे कि जो नीच हैं या अधम हैं, यानी कि जो बैकवर्ड जो कम्युनिटीज और लो कम्युनिटीज हैं, उनको ये लोग इंसल्ट करते हैं, उनको तालीम नहीं देते हैं और रिलीजन के नाम पर उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। तो हम अपनी पेन जब एक्सप्रेस करते हैं तो हमें कहा जाता है जी कि तुम लोग जो है रिलीजन को ट्विस्ट देते हो। हम ट्विस्ट नहीं देते हैं। तो ये एक जो है इस कंट्री के अंदर प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं जी कि मोदी जी जो हैं उनका जो ज्यादा कंसर्न है वो ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर से पावर्टी खत्म करें, जॉब्स को इंश्योर करें, लेकिन उनका ध्यान इन चीजों पे है ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने मुल्क को नहीं बेचा, मोदी जी ने जो है हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को बेचना शुरू कर दिया। तो अगर हमको हिंदुस्तान को बचाना है, अगर हमको हिंदुस्तान के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, इसकी डेमोक्रेसी को बचाना है, तो फिर हमको काम करना पड़ेगा बीजेपी को पावर से निकालने के लिए। राहुल गांधी जी जो हैं जी वो अब दो दिन के दौरे पे मिजोरम गए हुए हैं और आपको पता ही है वहां पे इलेक्शन होने वाला है। तो वहां पे उन्होंने बात करते हुए जो ओल्ड मिजो कल्चर और उनकी लैंग्वेज और ट्रेडिशन है उसकी बड़ी तारीफें की। इट इज ये जो उनका विजिट है इट इज पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। और उन्होंने कहा जी इस मौके पर बात करते हुए कि मैंने पहली दफा विजिट किया था इस इलाके का 1986 में अपने वालिद साहब राजीव गांधी के साथ, जिस वक्त मैं सिर्फ 16 साल का था। और यहां पे जो है मिजो नेशनल फ्रंट ने कोई भी डेवलपमेंट नहीं की है और मोदी जी जो हैं वो इसराइल के लिए ज्यादा वरिड है, उनको मणिपुर से या यहां के कुछ जो मुद्दे हैं उनके लिए वो वरिड नहीं है, माइनॉरिटीज के लिए वो वरिड नहीं है जो कि बड़ी मुश्किल में रह रहे हैं, जैसे दलित हैं, ट्राइबल्स हैं। और यहां पे वो पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है कि नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर जो है उसको खत्म कर दिया जाए। जिन स्टेट्स में कांग्रेस रूल कर रही है, कांग्रेस ने वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लाई है, और जिन इलाकों के अंदर बीजेपी रूल कर रही है वहां पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं आ रही। उन्होंने कहा जी कि इसका अंदाजा से लगाएं कि जहां पे बीजेपी रूल कर रही है वहां पे गैस सिलेंडर का प्राइस जो है 1000 रुपीस है, और जहां पे कांग्रेस है वहां पे गैस सिलेंडर का प्राइस 500 है। फिर उन्होंने बात छत्तीसगढ़ के फार्मर्स की भी की कि उनकी भी हालत अब बेहतर हो रही है। और इसके अलावा कांग्रेस ने हेल्थ इंश्योरेंस, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो है जो बहुत ज्यादा टर्मिनली इल है उनके लिए शुरू किए हैं, स्मॉल बिजनेसेस को सहायता दी है, 377 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पुअर बच्चों के लिए खोले हैं। और बीजेपी जो है वो इन स्मॉल बिजनेसेस को अटैक कर रहा है, जीएसटी के साथ उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, फार्मर्स को वीक कर रहा है। और जो इनकी डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी थी 2016 में वो रिडिकुलस थी, उसकी जो है उसकी वजह से इकोनॉमी ने इंडिया की बहुत सफर किया। और वो बस ये सब कुछ कर रहे थे मोदी जी एक आदमी को फायदा देने के लिए, और वो हैं गौतम अदानी, इसके अलावा वो किसी को फायदा नहीं देना चाहते। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज जनाब हेमा मालिनी साहबा ने अपना 75th बर्थडे मनाया। इस मौके पे ना सिर्फ बाकी फैकल्टी ने जो है फिल्म इंडस्ट्री की, बल्कि सायरा बानो जी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर एक बड़ी प्यारी तस्वीर अपनी हेमा मालिनी की और दिलीप कुमार की शेयर की। और उन्होंने कहा जी विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, योर ग्रेस, योर एलिगेंस इज अ सोर्स ऑफ एडमिरेशन फॉर मेनी, ग्रेटफुल दैट आवर फैमिलीज शेयर प्रोफाउंड बॉन्ड ओवर द ईयर्स। और इस तरह की उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की। और जनाब टाइगर 3 जो के लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स की, उसके अंदर जिसमें कि सलमान खान और कैटरीना कैफ आपको नजर आएंगे, उसका आज एक और ट्रेलर जो है वो सामने आया है। और इसके लिए आज उन्होंने डेट अनाउंस करते हुए कहा जी कि ये डेट जो है ये 12th नवंबर रहेगी। 12th नवंबर को आपको पता है कि दिवाली है, और उस दिन यानी कि पहले आपको तो पता ही है कि फिल्में जो हैं वो आती हैं फ्राइडे को, या जो है उससे भी पहले कभी कभी आ जाती हैं वेंसडे को, जैसे कि शाहरुख खान की पठान आ गई थी। और इन्होंने वैसे इससे पहले जो पहली वाली जो अपनी टाइगर की जो सीरीज की जो मूवी रिलीज की थी वो जनवरी 25th को की थी, वेंसडे का दिन था, ताकि रिपब्लिक डे की हॉलिडे जो है उसको पकड़ सके। लेकिन आज यशराज फिल्म्स ने ये कहा कि हम संडे को 12th को नवंबर को ये रिलीज कर रहे हैं, जिस दिन दिवाली है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो हमें लगता है कि जो डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस है उसके ऊपर फिर ये बहुत अच्छा करेगी। इसके साथ साथ आज कंगना रनावत जो हैं उन्होंने भी आज कहा कि जो उनकी फिल्म आने है इमरजेंसी, उसको अब इस साल में नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 है इट इज पैक्ड, तो इसलिए अब ये 2024 में इसको रिलीज करेंगी। पहले ये कह रही थी कि इसी साल में नवंबर 24th को मैं रिलीज करूंगी। जो इमरजेंसी है वो जो इंदिरा गांधी जो कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जो हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी लगाई थी उसके ऊपर ये फिल्म है, और कंगना रनावत इसमें जो है इंदिरा गांधी का ही रोल कर रही हैं। तो इन्होंने कहा जी कि अब ये मैं फिल्म जो है 2024 में रिलीज करूंगी। पाकिस्तान की ये जो डिफीट हुई है क्रिकेट में, सैटरडे को जो मैच था हिंदुस्तान के साथ वर्ल्ड कप 2023 का, इसमें जो शोएब मलिक है उन्होंने बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है, और उन्होंने कहा जी कि उनको कैप्टेंसी छोड़ देनी चाहिए है, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको अपनी गेम के ऊपर करना चाहिए, लेकिन वो लीडर नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस बना नहीं सकते हैं, और किसी भी क्रिकेटर को लीडरशिप और बैटिंग स्किल्स को मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दो डिफरेंट चीजें हैं। तो ये बहुत देर से जो है कैप्टन है लेकिन हमने इनके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं, और बाबर जो है उसको अब चाहिए कि लड़कों के साथ मीटिंग करे, अब जितने भी बाकी के मैचेस रह गए हैं, लेकिन बाबर जो है मैं सोचता हूं उनका कहना था कि ही कैन परफॉर्म वंडर्स, लेकिन अगर वो कैप्टन ना रहे। अच्छा जी शोएब मलिक साहब, फिर तो आपके बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि आपने भी कैप्टन बन के कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा था, तो अब ये तो कोई बात नहीं है, बैट पैच हर किसी के ऊपर आते हैं। अच्छा जनाब, ये जो क्लैश हो रहा था अहमदाबाद के अंदर, दुनिया के सबसे बड़े जो अलेजली कहा जाता है कि स्टेडियम था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया और अदरवाइज भी जो है क्रिटिसिज्म आया है कि जिस तरह का क्राउड वहां पे बैठा हुआ था उसने पाकिस्तान को और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। यहां पे कोई 100+ के करीब क्राउड बैठा हुआ था। पोस्ट मैच प्रेसर जो हुआ उसमें पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा कि कोई भी उसकी तरफ से क्राउड की तरफ से सपोर्ट नहीं थी, जिसने कि परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा असर किया। इंडियन फैंस जो हैं कॉन्स्टेंटली जय श्री राम कह रहे थे, यहां तक जिस वक्त मोहम्मद रिजवान आउट होके पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो जब वो उस गली सी में से गुजर रहे थे उसके भी मुंह के आगे जा के कह रहे थे जय श्री राम, और इसके अलावा जो है वो नारे लगा रहे थे नाम मिटाओ बाबर का, और इसके अलावा इंतहाई गंदे जो हैं वो जेस्चर्स कर रहे थे और पेपर प्लेन्स बना बना के फील्ड के अंदर फेंक रहे थे। यहां तक कि खुद हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों ने इस क्राउड के एटीट्यूड के ऊपर एतराज किया। तमिलनाडु के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उदयानिधि स्टालिन, उन्होंने एक्स के ऊपर कहा कि हिंदुस्तान जो है इट इज नोन फॉर स्पोर्ट्समैनशिप एंड हॉस्पिटैलिटी, लेकिन जिस तरह का रवैया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ किया गया ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है एंड इट्स अ न्यू लो। ESPN क्रिक इन्फो के जो एडिटर इन चीफ हैं संबित बल, उन्होंने कहा जी मैंने सारी दुनिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान के क्लैशेस देखे हैं, लाहौर में, बेंगलुरु में, एडिलेड में, सेंचुरियम में, जोहानिसबर्ग में और अब अहमदाबाद में, कभी भी जो क्रिकेट ग्राउंड है उस पर इतना होपलेसनेस मैंने नहीं देखा, जो कि सबसे बड़ी चीज होती है एक फैंस के पूरे का पूरा जो क्रिकेट का मैदान था वो नीला था, उसमें वहां पे कोई भी नहीं था। इसके अलावा लोगों ने इस चीज पे भी एतराज किया कि हसन अली को बहुत ज्यादा ना सिर्फ टॉन्ट किया जा रहा था जो पाकिस्तान के बॉलर हैं, बल्कि बहुत ही गंदी जबान उनके बारे में जो है वो बोली गई, और उनको कॉन्स्टेंटली जब वो खड़े होते थे फील्डिंग के लिए तो उनको अब्यूज किया जा रहा था। तो इसके ऊपर लोगों के जो है वो काफी रिएक्शन आए हैं। AFP के साथ वकार यूनुस का जो है वो इंटरव्यू चल रहा था, और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को एक एडवाइस दी है। उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को सीखना चाहिए इंडियन सीमर जसप्रीत बुमराह से, और वो कॉन्स्टेंटली अपनी पेस और फिटनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और अभी तक तो जो वर्ल्ड कप के 3 मैचेस हुए हैं उसमें इंतहाई अनइम्प्रेसिव लिए हैं। उनका कहना था कि 139 रन्स दे के इन्होंने सिर्फ 4 जो हैं विकेटें ली हैं, तो मुझे लग रहा है कि कोई इनका मिसिंग लिंक है डिसिप्लिन में, और ये जितना कोशिश कर रहे हैं विकेट्स लेने का उतना ही नहीं कर रहे हैं, और एक ही चीज बार बार करते हैं, यॉर्कर्स डालते हैं, तो वो बैट्समैन जो है वो अब इतना इंटेलिजेंट है कि उसको समझ आ जाता है और वो फिर इनको जो है बहुत ज्यादा बैटिंग देता है। उन्होंने कहा जी कि बुमराह जो है अभी तक वर्ल्ड कप में 8 विकेटें ले चुका है एट जस्ट 11.52। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल स्टैंटनर और जो फास्ट बॉलर है मैट हेनरी, उन्होंने भी 8 विकेट अभी तक ली हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया का जो उन्होंने टारगेट दिया था पाकिस्तान को 192 का, इसीलिए हम लोग डिफेंड नहीं कर सके क्योंकि शाहीन शाह की बिल्कुल ठीक नहीं थी बॉलिंग, और बुमराह ने जबकि दूसरी तरफ रिजवान और शादाब को बड़े जबरदस्त तरीके से आउट किया, 2 for 19 उसकी फिगर्स थी इन द 7th ओवर। और वो कहते हैं जी कि शाहीन शाह अफरीदी को अपना करना पड़ेगा, जरा थोड़ा सा एक्शन और उसका ख्याल करना पड़ेगा। और जनाब आज 210 रन्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कर रहा था चेज, बट इट ऐसे लग रहा था कि श्रीलंका के अगेंस्ट बिल्कुल ही क्रम्बल कर जाएगा इन द 14th वर्ल्ड कप 2023 गेम इन लखनऊ, क्योंकि जो दिलशान मधुशंका है उन्होंने फोर्थ ओवर में ही डेविड वार्नर को 11 पे, स्टीव स्मिथ को 0 पे और मिशेल मार्च जो है हालांकि उसने 52 रन बनाए लेकिन फिर भी बहुत जल्दी जल्दी वो उनको आउट कर रहे थे। इसके अलावा जॉश इग्लिस ने 58 बनाए, मार्कस लेबुशेन ने 40 बनाए। तो उसके फिर जब इन्होंने अच्छी बैटिंग दिखाई तो ऑस्ट्रेलिया आज श्रीलंका से जीता है, वरना बीच में लग रहा था कि बिल्कुल ये आज श्रीलंका से हार जाएंगे। इसके अलावा एडम जंपा ने 4 विकेट्स ली फॉर 47 और इससे पहले जो है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी मच नीडेड ये विन थी क्योंकि इससे पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था और 52 बॉल्स टू स्पेयर अभी थे इन फिफ्थ मैच। और इसके अलावा फिर साउथ अफ्रीका ने भी इनको 134 रन से सेकंड मैच में हराया था। तो आज जो है ये जब जीते हैं तो इनको बड़ी खुशी हुई। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, हम आपको ये न्यूज सुनाए बगैर तो आगे जा ही नहीं सकते थे। जो धमाके हुए हैं संडे के दिन, जो इंग्लैंड जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है और उसका मैच जो था अफगानिस्तान के साथ था, अफगानिस्तान ने जनाब इंग्लैंड को हराया दिल्ली के अंदर 69 रन से। और ये जो था इनका इंग्लैंड का फर्स्ट लॉस था टू अफगानिस्तान। और वैसे तो इनके चांसेस इतने भी अभी खत्म नहीं हुए लेकिन इनको बाकी आने वाले तमाम मैचेस इंग्लैंड को जीतने पड़ेंगे। अफगानिस्तान ने जो है 284 पे ऑल आउट कर दिया था, इंग्लैंड उसके जवाब में सिर्फ 215 ही बना सका था। जॉनी बेयरस्टॉ जो थे LBW हुए सेकेंड ओवर में, जो रूट ने 11 बनाए, डेविड मिलान जो थे ही वॉज कॉट एट एक्स्ट्रा कवर, सिर्फ हैरी ब्रुक जो था उसने 66 रन बनाए, इवन जॉश बटलर जो इनके कैप्टन थे वो भी कुछ नहीं कर सके। रहमानुल्ला गुरबाज जो है उन्होंने 80 रन बनाए ऑफ 57 बॉल्स और इकराम अली खेल ने बनाए 58। आदिल राशिद ने जी 3 विकेटें ली फॉर 42 और ये अफगानिस्तान की सेकंड विन थी एट ODI वर्ल्ड कप। इंग्लैंड जो है वो 4 साल पहले उसने टाइटल जीता था, जैसे कि मैंने आपको बताया डिफेंडिंग चैंपियन है और उसने अब अपनी जो है 3 में से 2 गेम्स लूज की हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सॉरी इनका इससे पहले जो मैच था उसमें भी ये हारे थे और अब जो इनका नेक्स्ट मैच है सैटरडे को साउथ अफ्रीका के साथ है मुंबई के अंदर। तो जनाब ये तो बड़े धमाके खेज खबरें जो हैं वो चल रही हैं, है जी
जी बिल्कुल जबरदस्त धमाका खेज खबरें।
और इसके बाद हम जाएंगे जी कैसर सगीर के पास, कैसर सगीर के साथ हम बात करेंगे जो हमारा स्पेशल क्रिकेट सेगमेंट है उसके ऊपर और पूछेंगे जरा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है।
जी जनाब ऐसा करते हैं एक टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो है कैसर सगीर से कॉन्टेक्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपके साथ वापस आते हैं। हमारा नंबर है 416-620-1778।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL because we care.
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ग्रो ग्रीन टीम चाहती है कि कम्युनिटी माहौलियाती इकदाम की वसी रेंज के बारे में जानें, जैसे गार्बेज की सफाई, कम्युनिटी में पौधा लगाने की तकरीबा, कम्युनिटी बागवानी और बीजों का इश्तराक, मौसमियाती तब्दीलियों के लिए लचक पैदा करना और घर में तवानाई की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, तूफान के पानी के इंतजाम के प्रोग्राम और तूफान के पानी के तालाब की हिफाजत, सैलाब से बचाव और बहाली और आवामी आर्ट प्रोजेक्ट पर वसाई और साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोग्राम और दीगर पायदार नकल व हमल के इकदाम। मजीद जानने के लिए विजिट करें brampton.ca/growgreen।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गालिक जी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
जस्टिन ट्रूडो तुहाडे आंढ गुआंढ च क्रैक अते कोकेन दे कारोबार नूं कानूनी बना रहे हन, इसे करके तुहानूं अपने आले दुआले जुर्म अते मुजरम ते चोरी चकारी नजर आ रही है। पीयर पोलिवर इन्हां सारे नशियां दी फरोख्त ते पाबंदी लाउणगे अते नशियां वाले मरीजां दे इलाज दा इंतजाम करनगे ते दोषियां नूं जेल भेजणगे। दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाई पीयर पोलिवर एंड कंजरवेटिव पार्टी ऑफ कैनेडा।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੋਟ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ $4,250 ਦੇ ਰਿਬੇਟਸ ਤਮਾਮ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਂ forddealers.ca।
قرضے سے نجات کے لیے ایک ہی نام محمد صدیق، آل دا سولوشن، پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا۔
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینکرپسی انسالوینسی کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80%۔ محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں، پرسکون زندگی، اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن۔ اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے، قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577۔
عدنان الوی، پریزیڈنٹ لائف ٹائم گروپ۔ عدنان الوی کو کون نہیں جانتا؟ آپ پچھلے 15 سالوں سے اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنی انکم اور اپنی ویلتھ کو انکریز کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے لیے ہمیشہ یونیک اور انوویٹو انویسٹمنٹ آئیڈیاز لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ آج کی بدلتی ہوئی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسوں کو زیادہ سیکیور رکھتے ہوئے میکسیمم پروفٹ بنائیں، تو آج ہی عدنان الوی سے رابطہ کریں۔ 416-301-0249۔
ویلکم بیک تمام سامعین، ہمیں 770 AM ڈائل پر سن رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور میرے ساتھ شازیہ ملک۔
عامر، یہ مجھے بتاؤ ذرا، یہ افغانستان نے کیا زبردست گیم کی ہے اور ڈیفینڈنگ چیمپئن کو ہرایا عامر۔
دیکھیں، میں
تو پاکستان کو ڈرنا چاہیے کہ نہیں ویسے، ہے نا؟ پاکستان کو تو اب افغانستان،
پاکستان سے تو سبھی ڈرتے ہیں۔
نہیں، اب تو پاکستان کو ڈرنا پڑے گا،
بالکل ڈرنا پڑے گا۔ اگر آپ دیکھیں لاسٹ کئی میچز کے، اگر آپ پیچھے دیکھیں تو پاکستان کا، اور اگر اسپیسیفکلی ہم افغانستان کی میچ کی بات کریں شاید، تو بہت ہی کلوز میچ تھے۔ آپ نے دو میچوں میں تو دیکھا ہوگا کہ آخری جو ہے وہ ہمارے، جس کو آپ منا بولتی ہیں، نسیم شاہ نے
چھکے مار کے
مطلب ہٹ کر کے کر دیا۔ ادر وائز پوری گرفت جو ہے وہ افغانیوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی،
اور حالانکہ ان کو ٹرین ہم نے کیا۔
ٹھیک ہے، اسی طرح کے جو ہمارے آصف تھے انہوں نے بھی میچ میں، مجھے ایگزیکٹ وہ دن یاد نہیں ہے، یہی ہوا کہ بہت کلوز ہو گیا۔ ورلڈ کپ میں بھی اگر آپ، انگلینڈ ورلڈ کپ میں بھی دیکھیں افغانستان کے ساتھ جو، تم اگر آپ 4-5 میچز لاسٹ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے اگر آپ دیکھیں، میچز اٹھا کے اس کی ہائی لائٹ دیکھیں، تو اوور آل جو ہے وہ افغانیوں نے جو ہے بہت اچھا کھیلا۔ ایون انہوں نے ایک وقت پہ جو ہے وہ پاکستان کو کنٹرول بھی کر لیا،
بالکل بالکل۔
پھر آخری سم آورز میں، جیسے میں نے کہا کہ آصف نے چھکے لگا دیے، نسیم شاہ نے چھکے لگا دیے، اور جو ہے پاکستان جیت گیا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ چاہے جو بھی ہوں، آپ نے سکھایا ہو، کچھ بھی کیا ہو، میرا ماننا یہ ہے کہ جو بھی ٹیم محنت کرے گی اور اس دن لڑے گی،
لے لے گی،
نہیں لڑے گی باقاعدہ۔ ابھی بات کر رہے تھے آپ لوگ سب، نیوز میں بھی آپ سنا رہے تھے، کالرز نے بھی آگے کہا۔ دیکھیں، شاہین آفریدی کو، مجھے میری پرسنل اسسمنٹ یہ ہے اجے جی کہ ان کو اس وقت دماغ میں ایک بات یہ بیٹھ گئی ہے جو ان کے اوپر پریشر بھی کریٹ کر رہی ہے کہ فرسٹ اوور میں جو ہے وہ وکٹ گرانی ہے۔ اتنی ہائپ کریٹ کر دی ہے، وہ بنا دیا اسٹار کہ بھائی بس یہ اب ہو کیا رہا ہے کہ جب ان کو پہلے اوور میں کوئی وکٹ نہیں ملتی، تو اب بعد کے اوورز دیکھیں ان کو تو بہت ہی ہٹ کرتے
ہیں۔
پھر پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی سپیڈ بھی جو ہے انجرڈ ہونے سے پہلے کی، وہ اب سپیڈ مجھے لگتا ہے کہ 100% وہ فٹ نہیں ہے، میری اپنی اسسمنٹ ہے، می بی آئی ایم رانگ۔ ابھی صغیر جو آئیں گے ہمارے ساتھ، کیسے صغیر، وہ بھی اس کو زیادہ بتائیں گے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایکشن بھی، جو اگر جو بھاگ رہا ہے شاہین اور جو بال ڈال رہا ہے، وہ بہت لوز بال پھینک رہا ہے، یعنی وہ پوری جان اپنی نہیں لگا پا رہا، پورا ہاتھ اس کا نیچے نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے وہ جو اس کی مشہور تھی کہ ڈیڈ جا کے بالکل بال لگتی تھی پیڈ پہ، وہ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا آرم جو ہے وہ پورا نیچے نہیں آ رہا ہے، یہ میری اسسمنٹ ہے۔
لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی عامر کہ یہ جو ہمارے اتنے سٹار، یہ جو بیٹس مین ہیں یا کہ یہ جو بولرز ہیں، ان کو پھر آپ سارا سال کھلاتے رہتے ہیں، پھر یہ انجر ہو جاتے ہیں جب مین ایونٹس آتے ہیں اس کے لیے، تو یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ 2-3 ڈفرنٹ ٹیمز بنائیں اور یہ سٹار جو بیٹس مین اور بولرز ہیں ان کو ہر گیم میں نہ کھلائیں نا، یہ تو دس از ویری بیڈ۔
آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایشیا کپ میں بھی یہی ہوا، لاسٹ ٹائم بھی شاہین جو ہے ورلڈ چل رہا تھا اس میں بھی انجرڈ ہو گئے۔ होता क्या है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो साउथ एशिया का जो इशू है ना वो यही है कि बस एक स्टार बन गया है, एक बन गया है तो बस अब वो समझता है कि मेरी सीट तो हो गई है पक्की और अब उसने हर हाल में खेलना है, हम स्टार बना दें। अगर आप देखें इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या और दूसरी जो है साउथ अफ्रीका में देखें, मैं श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा, उनके पास ऑल्टरनेट प्लेयर्स जो है इक्विवेलेंट बिल्कुल उसी लेवल का
अच्छा
उनका बेंच पे बैठा होता है।
ओके,
हमारा क्या होता है कि नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हो गया, ये सबको पता है, दिख रहा है कि भाई वो इंजर्ड हो गया था एशिया कप में, तो हमें 11th आवर में जो है वो
हसन अली को लेना पड़ा।
देखिए हालात है, आउट ऑफ द बॉक्स जो है, जबकि ऐसी कोई परफॉर्मेंस मैंने तो नहीं देखी कि कोई परफॉर्मेंस को बहुत जबरदस्त हो, और अभी भी अगर देखें विकेट ले रहा है वो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके पास
अब तो मार्क बॉलर नहीं है ना, वही बुमराह का तरह का नहीं है ना,
ठीक है ना, आपके पास ऐसा शाहीन का रिप्लेस या नसीम शाह के आपके पास बॉलर
ऑल्टरनेटिव होने चाहिए आपके पास।
और स्टार जो है वो ऐसे हो गए कि बस अब जो है उनको पता है कि यार अब मैं तो
बाबर को देखो यार, मेरा तो बाबर इतना मेरा फेवरेट वो था, प्लेयर था, बाबर बिल्कुल चल ही नहीं रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर बिल्कुल। हालांकि तुम देखोगे T20 के अंदर इसने कितना अच्छा खेला था लास्ट ईयर जो था, उसमें बहुत अच्छा खेला था,
नंबर वन रहा है बाबर जो है वो बैटिंग में नंबर वन, पाकिस्तान टीम इटसेल्फ आपने कई दफा न्यूज में बताया
कि नंबर वन, लेकिन अब तो नीचे आते जा रहे हैं लोग।
देखिए बैड पैच आ जाता है मुझे इस बात से बिल्कुल, लेकिन अब ये अनफॉर्चुनेट है कि इतने बड़े इवेंट में हमारा बैड पैच आया, खासकर बाबर का भी, लोग अभी भी, मैं कल भी काफी ट्विटर और सोशल मीडिया पे कल पढ़ रहा था कि बाबर जो है वो बड़े मैच में जरूर चलेगा, ही विल कम बैक, हमारी भी दुआ है कि बाबर जो है वो अपनी फॉर्म में वापस आए,
क्योंकि सिर्फ 29 ईयर्स एज है उसकी,
कुछ भी एज नहीं है, कुछ भी एज नहीं है, और ठीक है। लेकिन जो मैं बात करना चाहूंगा ना यहाँ शहजाद जी, वो है कप्तानी की बात, जो एग्रेशन एक कप्तान के अंदर होना चाहिए वो एग्रेशन हमारे पास बहुत टाइम से किसी भी कप्तान में नहीं आ रहा, बहुत ही माइल्ड कप्तान, बहुत ही सम टाइम, मतलब ऐसा लगता है कि वो बॉलर के अंडर प्रेशर में कप्तान है, यानी अगर शाहीन कोई बॉल कर रहा है या नसीम शाह कोई बॉल कर रहा है या हसन कोई बॉल कर रहा है, इवन वाइस कैप्टन शादाब कोई बॉल कर रहा है, अगर कोई गड़बड़ हो रही है कुछ हो रही है तो वो मुझे सम टाइम लगता है कि बाबर अंडर प्रेशर आ जाता है, बाबर की वो नेचर नहीं है कि डोमिनेट करे, यानी बढ़कर बोले कि यार भजन ऐसा करो कि एक ओवर हो गया ना, दो ओवर बहुत मार पड़ गई, जाओ हम उधर बाउंड्री पे खड़े हो जाओ,
यानी उसको अपनी जो अथॉरिटी है वो कमांड करनी,
कमांड करना नहीं है,
जैसे कि किसी जमाने में इमरान खान होता था ना,
वो तो लास्ट मुझे कहते हैं, उसके बाद कोई उसने नहीं है।
हाँ नहीं नहीं,
वसीम अकरम, अच्छा शाहिद अफरीदी मैं कहूंगा जब कप्तान बने, जैसा आप कह रहे हैं उनके अंदर वो चीज थी,
बिल्कुल,
इवन वसीम अकरम के अंदर थी,
बिल्कुल थी, बिल्कुल,
बाकी तो आप देख लें मिसबा आए, इंजमाम आए, बहुत सारे और आ गए होंगे इसके बाद, मुझे शोएब मलिक जो आप कह रही हैं उनकी बातें कर रही, उनके अंदर वो एग्रेशन नहीं था, वो डोमिनेशन, वो बिल्कुल
टीम को कंट्रोल करने का वो जो था ना वो नहीं कर सकते,
शट अप कॉल जो होती है ना आपके, जब बड़े से बड़ा स्टार बॉलर जो है अगर वो पिट रहा है कुछ हो रहा है आप उसको नहीं, तो वो आप शट अप कॉल नहीं कर पा रहे थे, आप उल्टा उसके प्रेशर में कि यार आप जो है वो जो है कुछ भी जो है वो नहीं कर पा रहे, ये इश्यूज है।
नहीं नहीं, ये तो कैप्टन को जरा थोड़ी सी अपनी कैप्टनसी जो है वो दिखानी पड़ेगी, और वाकई वो बात ठीक है कि अब आप देखें ना कि अभी 3 मैचेस हुए हैं और आमिर जो है बाबर जो है वो बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर सका और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, और ये तो यही होता है कि जो गेम्स होती हैं दे आर वेरी वेरी अग्रेसिव, अगर आपने परफॉर्मेंस ना, भाई कोहली जैसा जो स्टार था उसको नहीं था तो फिर हम कैसे। अच्छा हमारे साथ आ गए जी
कैसर सगीर, हमारे साथ जुड़ गए, हमारे पास कुछ ही मिनट रह गए हैं और हम कैसर को जो है अपने प्रोग्राम।
हाँ जी कैसर साहब, एक तो आप हार गए हैं, अपनी शर्त जो है जो मैंने आपसे कहा था हिंदुस्तान जीतेगा और आपने कहा था नहीं पाकिस्तान, तो वैसे तो आप हमारे लिए बिरयानी की प्लेट लेकर आएंगे सारी जो है थाली। अच्छा तो उसके अलावा आप जो है उस मैच के ऊपर भी बात करें और जो इंग्लैंड को हराया है अफगानिस्तान ने उसके ऊपर करें, और जरा थोड़ा सा फ्यूचर बता दें कि पाकिस्तान के बारे में आपको क्या नजर आ रहा है।
बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल मैं मानता हूं कि प्रेडिक्शन जो है ना वो, क्योंकि आप जाते हैं फेवरेट्स के साथ, आपको पता है कि उसी ने जीतना है, हर लिहाज से वही अच्छे हैं, हम जरा हवा के दूसरे रुख पे चलते हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी टीम जीत जाए, लेकिन बहरहाल ये कह लें कि पाकिस्तान हार गया और 8वीं शिकस्त थी सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान ने इनमें 8 में से 6 मरतबा सेकेंड टाइम बैटिंग की और 2 मरतबा पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम बैटिंग की, लेकिन रिजल्ट एक ही निकला। पाकिस्तान जो हारा है वो जब भी पाकिस्तान पहले खेला है वो ज्यादा मार्जिन से हारा है, यानी कि 7 विकेटों से शिकस्त हुई है, लेकिन जब पाकिस्तान चेस कर रहा था तो उसमें पाकिस्तान का जो मार्जिन है वो कभी 45 रन था, कभी 40 रन था, कभी 35 था, तो इस लिहाज से शायद चेस करना पाकिस्तान के लिए बेहतर रहता है और इंडिया ने इसका फायदा उठाया। अब दूसरा जो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं उसमें अफगानिस्तान का जीतना मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को क्वालिफाई करने में हेल्प मिलेगा। क्योंकि अब आप देखें कि इस वक्त जो सिचुएशन है सिर्फ एक दो टीमें जिनके तीन तीन मैच होना रह गए हैं, इन्होंने दो मैचेस खेले वो है नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका, मेरे ख्याल शायद कल वो खेलने अपना तीसरा मैच, इसके बाद तमाम टीमों के तीन तीन मैचेस हो जाएंगे और उसमें यकीनी बात है कि साउथ अफ्रीका इंडिया और न्यूजीलैंड वो अपने सारे मैचेस जीतकर टॉप पर होंगे और पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। पाकिस्तान वाइट टीम है जिसने तीन में से दो मैचेस जीते हैं, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान जीता है कल वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ और पाकिस्तान को बहुत हेल्प मिलेगी क्वालिफाई करने में।
लेकिन पाकिस्तान के लिए सोचने का लम्हा नहीं है कि अफगानिस्तान भी टफ टीम हो सकती है, वो भी अब इनको टफ मैच दे सकती है?
नहीं, आप अफगानिस्तान को मतलब हल्का नहीं ले सकते, उसकी वजह देखें ना कि इस वक्त पाकिस्तान से भी ज्यादा अफगान जो प्लेयर्स हैं वो T20 लीग्स खेल रहे हैं दुनिया में, उनको पूरी दुनिया के बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, IPL में भी वो खेल रहे हैं, पाकिस्तान नहीं खेलता। तो मैं समझता हूँ कि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है और आपको पता है सब कॉन्टिनेंट का कल्चर एक जैसा ही है, विकटें एक जैसी हैं और वो सब समझते हैं इस चीज को, तो इस लिहाज से अफगानिस्तान को सिर्फ ये देखना है कि वो जो 50 ओवर्स का मैच का प्रेशर है ना वो उन्हें सीखना है कि वो कैसे ले सकते हैं, वरना 2020 में मैं समझता हूँ वो एक खासी बैलेंस टीम है। और अफगानिस्तान का इंग्लैंड से जीतना, इसमें थोड़ा सा आपको दिलचस्प फैक्ट्स में शेयर करता चलूं आपके साथ कि अगर आप कोई भी वर्ल्ड कप उठा के देख लें, स्पेशली 2015 है, 2019 है और ये वाला भी है, ये उससे पहले भी था, इंग्लैंड हमेशा किसी हल्की टीम से हारा है, कभी वो आयरलैंड से हार जाता है 327 रन करके, वो टीम चेस कर लेती है और आयरलैंड ऐसा किया था, उसके बाद बांग्लादेश ने भी हराया इंग्लैंड को 2000 मेरा ख्याल है जो वर्ल्ड कप था 11 वर्ल्ड कप था उसमें, और उसके बाद 2015 में श्रीलंका ने उनको हराया, तो मतलब ये कि 2023 में ये वो फिर हार गए, तो इंग्लैंड हमेशा से एक मैच अपना हल्की टीम से हारता है वर्ल्ड कप में, तो इस मरतबा वो जो चांस था वो अफगानिस्तान को मिला और उन्होंने भरपूर तरीके से अवेल किया, हालांकि एक मौके पर यू नो वो अफगानिस्तान ने 113 पर उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी लेकिन 190 पर उनके 6 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर अपने आप को संभाला, वो 284 तक टारगेट ले गए थे और इंग्लैंड प्रेशर में आ गया क्योंकि अफगानिस्तान की बॉलिंग अच्छी है और पाकिस्तान को भी बहुत मोहतात रहना पड़ेगा अफगानिस्तान से खेलते हुए, क्योंकि ऐसे कई मौके आए कि जब अफगानिस्तान पाकिस्तान को ऑलमोस्ट ये कहने के पाकिस्तान से जीते जीते रह गया।
ठीक है, ठीक है कैसर, थैंक यू वेरी मच, आज हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, आप बिजी थे, हम ज्यादा आपके साथ बात नहीं कर सके, हालांकि हम चाहते थे कि हम आपके साथ और भी कुछ बातों के ऊपर जो है आपका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लेते, लेकिन हम डेफिनेटली आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आपके लिए इसी तरह हम जो है क्रिकेट स्पेशल लेकर आएंगे, पूरा वर्ल्ड कप ये जो चलता रहेगा पूरा महीना 6 बजे के बाद हमारा स्पेशल चलता है क्रिकेट स्पेशल, हम कल आपके साथ एक और स्पेशल एपिसोड के साथ आएंगे, बट फॉर नाउ मुझे और आमिर को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कैसे जी, बहुत शुक्रिया जी, ये बिल्कुल हमारा स्पोर्ट्स सेगमेंट था, इंशाल्लाह कल फिर जो है वो आपके साथ जो है प्रोग्राम में शामिल होंगे और हम कोशिश करेंगे कि कैसर सगीर को जो है वो जल्दी प्रोग्राम में जो है वो शामिल कर लें। शाहजा जी आपका बहुत शुक्रिया, तमाम सामईन और जो हमें नाजरीन जो है हमें जो देख रहे हैं और जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर, मुझे आमिर अहमद को, शाजिया मलिक को, हमारी पूरी साजो आवाज की टीम को और आज हमारे इंजीनियर जिशान को जो है वो इजाजत लेने का जो है वो टाइम आ गया, तो अब जो है वो इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो कल फिर आएंगे, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
WTOR Youngstown Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Virash Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington DC. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world, in words and in music.
तेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जल मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प के आहें भर भर के जल मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया आग से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे हाय मुझे क्यों प्यार आया तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा गली गली गुजरे जिधर से जल मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जल मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी
शीशे के घरों में
इनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं।
आँखों पे
पड़े कभी करवट लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन या गर्मियों की रात जो पुरवाइयां चले या गर्मियों की रात जो पुरवाइयां चले ठंडी सफेद चादरों जागे देर तक तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन मन चली कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली देख 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 मुझसे न शर्मा एक 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 मैं हूँ एक भौरा ओ और तू कली ओ मन चली कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली देख 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 मुझसे न शर्मा एक 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 मैं हूँ एक भौरा और तू कली ओ मन चली कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली तेरा नाम आई है रंग भर शाम फूलों के छल के हैं जाम औरों ने दिल लिए थाम ऐसे में ऐसे में तोड़ के प्रेम की डोरी चकोरी ओ गोरी तू कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली हम आहे भरेंगे आ जा तो बात करेंगे छुप के मुलाकात करेंगे ये सच है हे हे हो हे हो ये सच है मैं हूँ एक दीवाना ये माना न जाना तू कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली ओ मन चली चली ना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूं लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं। मजबूर हूं लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। जमाने भर की बातों का ठहर जाओ सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का चले जाना अभी से किस लिए मुँह मोड़ जाते कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो।
चांद चुरा के लाया हूँ चांद चुरा के लाया हूँ चल बैठे चर्च के पीछे। ओ ना कोई देखे ना पहचाने बैठे पेड़ के नीचे और चल बैठे चर्च के पीछे।
मेरी लाज की सोचो कल बापू जाग गए थे
अरे जो होना था कल हुआ था, आज तो आज की सोचो।
जाग गए तो
जागने दो ना।
अच्छा
हाँ,
तो फिर चल बैठी चर्च के पीछे। पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं, चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं। ढूंढना पाए कश्ती वाले साहिल से कह जाएं।
बोल दिया तो
बोलने दो ना।
अच्छा
हाँ,
तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। अरे चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे।
ओ, ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, हो चल बैठे चर्च के पीछे। ओ,
चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे।
तेरी शादी पे दूँ तुझको तोहफा मैं क्या, पेश करता हूँ दिल एक टूटा हुआ। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। बेवफा ही सही, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी। खुश रहे तुझको महफिल मिले, ओ, 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 जा मैं तन्हा रहूं, तुझको महफिल मिले। डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले। आज मर्जी यही, ना खुदा है मेरी। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुश रहे